हमने ज्ञानी का यज्ञ देखा, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ज्ञानी की दृष्टि, वो सब जगह ब्रह्म देखता है, सब चीज में ब्रह्म ही ब्रह्म उसको नजर आ रहा है। जो साधक हैं उनके लिए क्या है, हम लोग तो साधक हैं, हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि 12 यज्ञ उन्होंने बताए यहां पर। तो 12 यज्ञ के अंदर अगर हम उनका हमने विवरण पूरा देखा है, डिटेल देखा है, आज हम संक्षेप में देखेंगे कि ये कैसे जो है हमारे परसेप्शन और रिस्पॉन्स को दिखाते हैं। मैंने पहले बताया था ना कि सारे परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स को भी ये दिखाते हैं। तो इसमें जो देव यज्ञ है वो जो है देवताओं के लिए करना है, मदर सरस्वती के लिए किया, अपना सरस्वती माँ के लिए किया, लक्ष्मी के लिए किया, या वायु अग्नि उन किसी देवताओं के लिए किया। तो उनसे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट जो है फाइनाइट होता है। इन देवी देवताओं से जो भी आपको फल मिलेगा वो फाइनाइट फल मिलेगा। मगर जो ज्ञान यज्ञ होता है उसके अंदर क्या रिजल्ट है, रिजल्ट इज इनफाइनाइट, क्योंकि आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्म क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपको फर्क पता लगा देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के अंदर। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं कोई कर्म कांड से, तो उसके अंदर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, सीमित रिजल्ट मिलेगा। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हो उतना आपको फल मिल जाएगा। हर देवता का एक अधिकार है कि आप ये दे सकते हो, और अगर आपने ठीक से उनकी पूजा की तो वो फल देने के लिए बाध्य हैं, वो देंगे, मगर उसके अलावा नहीं कर सकते कुछ। इसलिए देवी देवताओं की पूजा जो हम करते हैं उनका जो फल हमको मिलता है वो फल फाइनाइट है, और ज्ञान यज्ञ से जो हमको फल मिलता है, किस फल की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। तो ज्ञान यज्ञ से इनफाइनाइट फल की प्राप्ति होती है। अब एक है विषय ग्रहण यज्ञ। देखो ये परसेप्शन के अंदर जो है कंट्रोल आ रहा है, विषयों का ग्रहण जो है परसेप्शन है। तो उसमें आप कौन से विषय लेते हो, केवल जो शास्त्र विहित विषय है केवल उनका ग्रहण करना है, इसको विषय ग्रहण यज्ञ कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सब किस्म का खाना खा लेते हैं, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, जो भी हो मिल जाए खा लेते हैं। मगर आपने अगर विषय ग्रहण यज्ञ करना है तो आपको जो है एक व्रत लेना होगा कि आज से हम सात्विक भोजन करेंगे। तो फिर क्या होगा, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन बाहर चले गए, विषयों पर नियंत्रण हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे योग यज्ञ है, ये क्या है, प्राणायाम प्रत्याहारी रूपी यज्ञ है, अष्टांग योग के अंदर ये पड़ता है। उसके बाद में संयम यज्ञ है, प्रत्याहार करने के बाद में जो यज्ञ हम करते हैं उसको संयम यज्ञ कहते हैं। फिर एक प्राणायाम यज्ञ हम लोगों ने देखा, प्राणायाम यज्ञ क्या है, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए है, हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो प्राणायाम से बढ़ती है, उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हमने देखा द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ के अंदर हम देखो देते हैं, हम यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले सब हम रिसीव कर रहे थे, भीतर की एनर्जी को बढ़ा रहे थे प्राणायाम से शरीर, अब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ में क्या होता है, केवल द्रव्य का देना ही द्रव्य यज्ञ नहीं है, श्रमदान भी यज्ञ है, आपकी भावनाओं का दान जो है, कोई आदमी डिप्रेस्ड है आपने उसको इमोशनली सपोर्ट किया वो भी एक दान है, भावना का दान है। तो आप जो है अर्थ का दान कर सकते हो, द्रव्य का दान कर सकते हो, भावना का दान कर सकते हो, श्रम का दान, शारीरिक लेवल पर श्रम दान कर सकते हो। तो ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। संसित व्रत आपने एक वैल्यू पकड़ ली, क्या वैल्यू है, अहिंसा, अब हम हिंसा नहीं करेंगे। देखो रिस्पॉन्स आपको समझ में आ रहा है ना, परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स, हमारी लाइफ क्या है, हमारा जीवन क्या है, सारा जीवन जो है हमारा परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स, परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स है। और हम सुखी कब होते हैं, जब हमको जो है परसेप्शन और रिस्पॉन्स के अंदर सुखी मिलता है, सुख मिलता है तो हम सुखी, अगर दुख मिला तो दुखी। संस्थित व्रत अहिंसा आदि न करना। तप यज्ञ, तप यज्ञ में क्या है, चंद्रायन व्रत, चंद्रायन व्रत आपको बताया था ना, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है और जैसे जैसे घटता है उसके हिसाब से आपने खाना कम बेशी करना है। फिर आता है स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ में हमने क्या देखा, केवल पारायण, केवल पारायण, विष्णु सहस्रनाम का पारायण कर रहे हैं या गीता का केवल पारायण कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं या उपनिषद का पारायण कर रहे हैं, उसका अर्थ नहीं मालूम है, मीनिंग। जैसे हम लोग जो है बहुत लोग विष्णु सहस्रनाम करते हैं, उनसे पूछो सहस्रनाम का मतलब बताओ, नहीं आता है, उसको पारायण कहते हैं। तो कुछ लोग पारायण यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ, उसके बाद में उससे बेहतर है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ बेहतर है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हमको अर्थ का पता लगता है, अर्थ का पता लगता है कि हम क्या कह रहे हैं। गीता का हमने पारायण किया, गीता क्या कहती है, विष्णु सहस्रनाम का पारायण किया, विष्णु सहस्रनाम क्या कहते हैं, रामायण का पारायण करते हैं लोग, रामायण के अंदर क्या कहा है उसका अगर अर्थ को समझना है तो वो हो जाएगा ज्ञान यज्ञ। उसके बाद में आत्मसंयम योग यज्ञ, निर्भीत समाधि यज्ञ, ये हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर हम अपनी जीवात्मा की आहुति परमात्मा में देते हैं, इसका मतलब क्या, जीवात्मा खत्म हो गई, अब क्या रह गया, अब परमात्मा रह गया, इससे क्या होता है, अविद्या का नाश हो जाएगा। जीवात्मा की आहुति अगर हम परमात्मा में कर दें तो अविद्या का नाश हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अविद्या का नाश अगर हो गया तो उसके बाद आप ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने के बाद में दो चीजें होती हैं, एक चीज तो होती है उस वो हो सकता है कि उसकी वासना कुछ ना हो, वो अपना गुफा में बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं निवृत्ति मार्गी, निवृत्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, संसार में से कुछ लेना देना नहीं है उसको, संसार से बस इतना ही लेना है कि हमको शरीर के यापन के लिए जो चाहिए उतना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। उसको हम लोग कहते हैं निवृत्ति सन्यासी या निवृत्त रूपी ज्ञानी। निवृत्ति रूप ज्ञानी कौन कौन रहे हैं, तपोवन निवृत्ति, वो ऊपर से नीचे नहीं आया, हमको ज्ञान यज्ञ वगैरह कुछ नहीं करना है, जिसको ज्ञान चाहिए यहां आओ। और प्रवृत्ति मार्गी कौन है, विवेकानंद उनके गुरु रामकृष्ण निवृत्ति ज्ञानी थे, मगर हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस हम बैठे हुए हैं आराम से। विवेकानंद प्रवृत्ति मार्गी, हमको ज्ञान बांटना है। स्वामी चिन्मयानंद ज्ञान बांटना है प्रवृत्ति मार्गी। अब उनका देखो रिस्पॉन्स दो किस्म का हो गया, ज्ञान के पश्चात भी रिस्पॉन्स दो किस्म का है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये यज्ञ जो है ज्ञानी के यज्ञ एक बताए ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी, उसका विजन क्या है, उसकी दृष्टि क्या है दुनिया की तरफ, उसको चमचे के अंदर भी भगवान नजर आते हैं वो भी ब्राह्मण है, हर द्रव्य क्या नजर आता है वो भी ब्राह्मण है। और साधक के लिए भगवान ने ऐसा कहा कि अगर तुमको वो ज्ञान चाहिए तो इस तरीके से आप चलो, आपके परसेप्शंस एंड रिस्पॉन्स जो है ऐसे होने चाहिए, आपका संयम होना चाहिए, कैसे विषय ग्रहण करेंगे, कैसे इंद्रियों का नियमन करेंगे, कैसे प्रत्याहार करेंगे, कैसे इंटरनल एनर्जी को आप बढ़ाएंगे, कैसे फिर आप जो है वैल्यूज को लेंगे, संस्कृत व्रत कैसे करेंगे, चंद्रायन व्रत कैसे करेंगे, सब उन्होंने एक एक करके सब समझाया। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, सर्वे एते ये जो 12 यज्ञ करने वाले हैं ये सब जो है यज्ञ विद्या, यज्ञविद मतलब यज्ञ के बारे में जानते हैं तभी तो करते हैं। आप किसी भी चीज को करना चाहेंगे तो पहले तो उसके बारे में जानना होगा ना, तब तो आप करेंगे। तो ये सब सब यज्ञ विद हैं। और यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ क्षपित कल्मषा यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं। यज्ञों द्वारा निष्पाप कैसे होते हैं? आप जब भी भगवान के लिए कुछ काम करते हो तो आपकी वासना का क्षय होता है, मन शुद्ध होता है। हम लोगों ने आगे भी देखा है कि जब हमारा मन भगवान का चिंतन करता है तब वो मन साफ होता है, वही मन जब जगत में जाता है तो वो मैला होता है। मैला होता है मतलब वासना इकट्ठी करता है, वासना इकट्ठी करता है मतलब लाइक्स डिसलाइक्स को लेके आता है, फिर उसके हिसाब से आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से आपके राग एंड द्वेष के हिसाब से आप काम करते रहते हैं। और जो भगवान के लिए कर्म करे, यज्ञ किसके लिए होता है? यज्ञ तो भगवान के लिए होता है। जब हम आहुति देते हैं तो हम कहते हैं ये किसके लिए है? वो भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। उसे मन शुद्ध होता है। अर्थात उपयुक्त यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, 12 किस्म के जो यज्ञ बताए हैं उसे आस्ते 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 आपका मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा मतलब आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पाप क्या है? वासना पाप है। हमारे BMI चार्ट के अंदर वासना जो है वो पाप है, उसको हटाना है। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं? वे यज्ञ क्षपित कल्मष कहलाते हैं। तो जिसके पाप खत्म हो गए, जिसने यज्ञों द्वारा अपने पाप को खत्म कर दिया, उस पुरुष को क्या कहेंगे? यज्ञ क्षपित कल्मष है, इसने यज्ञ के द्वारा अपने सारे पाप काट लिए हैं। एवं यथोक्तान यज्ञान निवर्त, इस प्रकार उपयुक्त यज्ञों का संपादन करके भगवान कहते हैं कि एक और दूसरे किस्म के भी भक्त हमारे हैं, वो क्या है? 31वां श्लोक देखिए।
यज्ञशिष्टामृतभुज
यान्ति ब्रह्म सनातनम्
नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतो न कुरु सत्तम यज्ञशिष्टामृतभुज
यान्ति ब्रह्म सनातनम्
नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यस्य सत्तम
यज्ञशिष्टामृतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनम्। भगवान कहते हैं एक और चीज होती है, एक यज्ञ शिष्ट होता है उसको अमृत कहते हैं, उसको खाने वाले भी ब्रह्म सनातन को पा जाते हैं। तो एक तो यज्ञ करने वाले होते हैं, उनका तो आस्ते आस्ते उनके सारी वासना, उनके पाप खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म हो जाने के बाद में फिर उनको ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञानी हो गए। दूसरे हैं वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का जो बचा हुआ है। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ करते समय जो उसको बचा हुआ होता है उसको खाते हैं, उसको खाते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप लोग रविवार आइए, रविवार हम गायत्री हवन करेंगे, उस हवन के टाइम में हम जो है आहुति डालेंगे। आहुति डालने के बाद में आप ख्याल कीजिएगा, हम उसमें से प्रत्येक आहुति में से एक थोड़ा सा बचा के एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको कहेंगे यज्ञ शिष्ट। आहुति डाली, जिस घी चम्मच को हम डालते हैं उसके बाद में यहां बगल में बाएं तरफ आप देखिएगा, फट तो ऐसा करेंगे, फिर घी लेंगे, तब तक मंत्र फिर जो है अम्मा बोलेंगी, अब फिर हम डालेंगे, फिर वहां से लेके फिर यहां डालेंगे, फिर ऐसे करके 108 टाइम्स करके वो एक एक बूंद करते 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 वो थोड़ा सा हो जाता है, उसको कहेंगे यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से जो बचा हुआ है, यज्ञ शिष्ट। उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत, दैट इज अमृत। भगवान को ऑफर करने के बाद में जो बचा है वो है अमृत। तो अमृत जो है उसको भुजा, उसको जो खाता है, उसको भगवान कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो भी परम ब्रह्म परमात्मा को पा जाता है। बोलो कितना सहज उपाय है, ये सरल उपाय है, है कि नहीं, यज्ञ करना नहीं है, केवल यज्ञ शिष्ट खाना है, यज्ञ शिष्ट केवल उतना ही करना है। देखो यहां पर ये सेकंड कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है जो यज्ञ करके अपने आप को मन को शुद्ध करते हैं, है? जिनको उन्होंने भगवान ने कहा यज्ञ चपित कलमसाहा, जिसको कहा। दूसरे कैटेगरी वाले लोग जो हैं वो क्या है, जो यज्ञ करने में सहायता करते हैं, यानी यज्ञ शिष्टा अमृत भुज, यज्ञ शिष्ट जो बचा हुआ अमृत है उसको ग्रहण करते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तो भगवान कहते हैं इनको भी सनातन परमात्मा ब्रह्म की यांति प्राप्ति होती है। आगे भी तीसरे अध्याय में हमने देखा था यज्ञ शिष्टासीन है संतो मुच्यंते सर्व किल्ब सही, जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं उनके भी पाप खत्म हो जाते हैं, उनके भी पाप खत्म हो जाते हैं। देखो इसके पीछे विज्ञान है, आप आस्ते आस्ते समझो तो समझ में आ जाएगा। एक तो यज्ञ करके अपने पाप को क्षय कर रहे हैं, और दूसरे जो होते हैं यज्ञ में सहायता करते हैं उनके भी पाप धुल जाते हैं। यज्ञ में जो सहायता करते हैं उनके भी पाप धुल जाते हैं। कैसे धुलते हैं, अरे भाई आप आस्तिक हो तभी तो सहायता करने आते हो। जब आप सहायता कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, किसकी सहायता कर रहे हो, भगवान के लिए ही तो कर रहे हो। हमने पहले ही आपको बता दिया रूल क्या है, जब आपका मन भगवान में लगता है तब आपका मन शुद्ध होता है, वही मन जब आपका संसार में जाता है तो वो मैला होता है। तो अगर कहीं यज्ञ हो रहा है उसमें आप योगदान कर रहे हैं, योगदान मतलब आप पैसा नहीं देंगे, आप यजमान नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, आप कुछ नहीं करना है, आप केवल आएंगे, सहायता करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने में सहायता करेंगे, तब भी आपको उसके अंदर लाभ है। तो ये यज्ञ छपित कलमस जो वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है तीसवें श्लोक में, वो जो है दोनों को लागू होता है, दोनों को, जो यज्ञ करते हैं उनको भी मिलता है और जो यज्ञ में सहायता करते हैं उनको भी यज्ञ छपित कलमसा कहा जाता है। तो दोनों को ही लाभ होता है। अब ये सहायता कैसे होती है, जैसे हमारे वहां पर ब्रह्मचारी कोर्स के अंदर कोई लोग बोलते हैं एक ब्रह्मचारी को पढ़ाने के लिए मान लो 1,00,000 रुपया लगता है कि दो, सही मानों में बताओ तो 60-70 ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में हम लोग का 1 करोड़ खर्च होता है। अब कई लोग जो है उसके अंदर दान देते हैं, बहुत से दानी है 1 करोड़ दान देकर चले जाते हैं। अभी हमारे आगे शायद 2-3 कोर्स लोग लाइन लगा के बैठे हैं, उसके बाद एक एक ब्रह्मचारी के पीछे भी लोग दान करते हैं, वो लोग बताते हैं एक ब्रह्मचारी के पीछे इतना खर्चा है, दान देते हैं। फिर जो है आप जो है ब्रह्मचारियों को किसी कोई भोजन का इंतजाम कर देता है, कोई फ्रूट्स का इंतजाम करता है, कोई ड्राई फ्रूट्स का इंतजाम कर देता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक आदमी जो है हर हफ्ते हम लोग को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट देता था, एक आदमी रोज एक फल देता था, सीजनल फल। आम का सीजन हो तो आम मिलेगा, लीची का सीजन हो तो लीची मिलेगा, अमरूद होगा तो अमरूद होगा। उसने ये व्रत लिया, 70-80 ब्रह्मचारी हैं, 70-80 फल रोज आते थे 2 साल तक कंटिन्यूस। ये सब इसके लिए सेकंड कैटेगरी के लोग जो हैं जो यज्ञ में सहायता करते हैं। जैसे हमारे यहां हम लोग जब पूजा वूजा करते हैं तो हमारे मिशन से बोलते हैं ना अन्नदान करो, आप सहायता कर रहे हो। आपका भी जो है उसके अंदर पाप जो है कमती होते जाते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो यज्ञ करने वाले एवं यज्ञ में सहायता करने वाले दोनों ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि आपका मन शुद्ध हो रहा है। हो सकता है यज्ञ करने वाले का मन शुद्ध थोड़ा जल्दी होगा, ज्यादा होगा, मगर यज्ञ में सहायता करने वाला और यज्ञ में सहायता न करने वाले के, आपको समझ में आ रहा है ना, यज्ञ में सहायता करने वाला जो अपने परिश्रम दे रहा है, श्रम दे रहा है या दूसरे किस्म से सहायता कर रहा है, उसको भी लाभ हो रहा है, उसको भी लाभ हो रहा है, उसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट। तो कैसे यह प्राप्त होती है? जो चित्त शुद्धि होगी पहले, उसके बाद चित्त एकाग्रता आएगी और उसके बाद में ज्ञान हो जाएगा। और हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि चित्त शुद्धि के लिए समय बहुत ज्यादा लगता है, ज्ञान में समय नहीं लगता है। ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, आप ब्रह्म हो, बस इतना ही ज्ञान है। ज्ञान इतना ही है कि आप ब्रह्म हो। तो हम तो कहते रहते हैं, सूख जाता है गला बोलते बोलते, फिर भी आप नहीं मानते हो। क्यों नहीं मान रहे हो? मन शुद्ध नहीं हुआ है, मन शुद्ध नहीं हुआ है। वो हमारे वहां पर पवई में एक महात्मा थे, क्या नाम था उनका, बीड़ी बनाने वाले महात्मा, क्या नृसिंह नरसी,
आपने मेरे को बुला
वो बीड़ी रोल बनाते थे वहां पर पवई में, एकदम आश्रम के नजदीक में। स्वामी चिन्मयानंद जी वो ब्रह्मचारियों को ले जाके बोले इनसे मिलो, ये ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो उनके एक मित्र ने कहा कि आज वहां पर प्रवचन होने वाला है, आप चलोगे? बोला चलते हैं, बीड़ी उड़ी बंद करके चल दिए। वहां जाके केवल सुना आप ब्रह्म हो, उनका ज्ञान हो गया, हो गया।
नरसिंह दत्त महाराज
ऐसे ही, नरसिंह दत्त ऐसे, ऐसा होता है। तो यज्ञ करने वाला हो या यज्ञ में सहायता करने वाला हो, ज्ञान की प्राप्ति, ये उनका ज्ञान देखो एक एक वाक्य से हो गया, उनका एक डिस्कोर्स, एक प्रवचन सुनने से काम हो गया।
निसर्ग दत्त महाराज
कैसे क्या होता है, कब जीवन में मोड़ आ जाता है पता नहीं है। एक वहां कलकत्ते में एक मारवाड़ी सज्जन थे, ये करीबन 70-80 साल पहले की बात है, जब वहां पर इंडिया में गैस भी नहीं होता था, लोग चूल्हे जलाते थे। तो उसकी एक नौकरानी थी, तो सवेरे शाम चूल्हा जलता था, सवेरे शाम खाना पकता था। तो एक दिन वो नौकरानी बोलती है कि आज तो बहुत देर हो गई चूल्हा जलाने में। अब उसके मालिक ने सुन लिया, आज तो बहुत देर हो गई चूल्हा जलाने में, वो सोचने लगा कि मेरा जीवन का इतना समय चला गया, मैंने अभी तक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, घर छोड़ के निकल के चला गया,
बहुत देर हो गई।
देखो इतनी सी बात में उसको क्या ज्ञान आ गया है। उसकी नौकरानी कहती है कि आज चूल्हा जलाने, अब चूल्हा जलाने में तो टाइम लगता है ना, उसके अंदर 20-25 मिनट लगेंगे तब उसके बाद खाना बनेगा, यहाँ गैस की तरह नहीं ट्रक चढ़ा दिया जाती है, कोयला जलाओ धुआं होगा फिर उसके अंदर आग होगी। तो ऐसे आदमी को लग जाता कभी कभी, नयम लोक अस्ति अयज्ञ से कुत अन्य कुरुसुत्तम है। ओ अर्जुन, जो अयज्ञ से है, अयज्ञ मतलब जिसने कोई किसी का यज्ञ नहीं किया, न यज्ञ करता है न यज्ञ करने में सहायता करता है, उसको हम क्या कहेंगे, अयज्ञ। न कोई यज्ञ कर रहा है और न करने में कोई सहायता करता है, तो नयम न अयम लोक है, उसको इस लोक में भी कोई सुख नहीं है, तो दूसरे लोक की क्या बात करनी है, दूसरे लोक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जिसने साधना नहीं की है और कोई चेष्टा भी नहीं कर रहा है, किसी की सहायता भी नहीं करता है, उसको हम अयज्ञ कहेंगे। इसी को आगे हम लोगों ने देखा है, उसको इंद्रिय राम कहते हैं। इंद्रिय नाम मतलब राम मतलब रमन करना। जो अयज्ञ है वो क्या कर रहा है, जो यज्ञ नहीं कर रहा है वो संसार में है, सीधा बात है, आइदर आप इस तरफ हो नहीं तो उस तरफ हो। इस तरफ वाले जो है वो यज्ञ कर रहे हैं या यज्ञ में सहायता कर रहे हैं, और जो आदमी न यज्ञ कर रहा है न यज्ञ में सहायता कर रहा है वो किस तरफ है, वो इंद्रियों में रमन कर रहा है। तो इंद्रियों में रमन करने वाले को उन्होंने कहा कि वो पाप खाते हैं, जो अपने लिए खाना बनाते हैं दूसरों को नहीं देते हैं, उनको भगवान ने आगे ही तीसरे श्लोक अध्याय में कह दिया है कि वो पाप खा रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, उनका जो है फुलफिल कृतकृत्यता कभी नहीं होती है, कभी भी वो फुलफिल नहीं होते। इसलिए हमको क्या करना है, यज्ञ को जानो, यज्ञ को करो या यज्ञ में सहायता करो। पहले तो यज्ञ को जानो, 12 किस्म के यज्ञ हैं बताएं, इनको करो, और नहीं तो यज्ञ में सहायता करो। शंकराचार्य जी कहते हैं यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट है, यज्ञों के शेष का नाम, जो हमने आपको बताया ना एक एक बूंद करके हम घी बचाएंगे वो यज्ञ शिष्ट है, वही अमृत है, उसको जो भोगते हैं वो यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी हैं। उपयुक्त यज्ञों के कर्म के उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। है ना, एकदम साफ समझ आ रहा ना। शंकराचार्य जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि यज्ञ का जो बचा हुआ अंत है प्रसाद करने के बाद में, उसको जो भोग करता है, उसका जो भोजन करता है, उसको जो खाता है, उसको भी सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, अपने आप को पूछो हम कितना क्या करते हैं, उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता। ये लोक, यह हमारा जो लोक है मनुष्य लोक है बोलते हैं, वो भी नहीं मिलता है। फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है, अगर ऊपर वाले लोक में जाना है तो उसके लिए तो साधना अलग है ना, आपको स्वर्ग जाना है कि उसके ऊपर महर जना तप सत्यम लोक में जाना है तो उसकी साधना अलग है। अगर इसी लोक में आपको अगर नहीं मिले सुख तो दूसरे लोक का सुख क्या मिलेगा आपको। अच्छा, भगवान जो है ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा करेंगे, पहले बताएंगे कि ये यज्ञ, हर आदमी ये पूछता है कहां लिखा हुआ है, भगवान आपको कहां से मिले बारह यज्ञ, आप तो बताते हो वेद है वेद है, वेद में हमको बताएंगे आप कहां लिखे हुए हैं, तो भगवान बताते हैं हमको कहां से मिला है। 32वां श्लोक,
एवं बहुविधा यज्ञाः, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे
एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे
एवं बहुविधा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे
एवं बहुविधा यज्ञ बोले 12 यज्ञ नहीं है बहुविधा बहुत से यज्ञ हैं कहां लिखे हैं भगवान वितता वितता ना विस्तार से लिखे हुए हैं कहां पर ब्रह्मणा ब्रह्मणा मतलब वेद मुखे वेद की वाणी के अंदर वेद के अंदर बहुत से ऐसे यज्ञ विस्तार से लिखे हुए हैं हमने तो केवल आपको 12 यज्ञ थोड़े से समझा दिए आपके लिए आपके परसेप्शन और रिस्पॉन्स के लिए हमने आपको ये समझा दिए मगर अनेक यज्ञ हैं सारे यज्ञ क्या काम करते हैं सारे यज्ञ का एक काम है क्या काम है अब तो आपको बताना चित्त शुद्धि बस और दूसरा काम नहीं है सारे यज्ञों का एकमात्र काम है कि चित्त की शुद्धि कैसे चित्त की शुद्धि होती है जब भी आप देखो पूजा करते हो जप करते हो ध्यान करते हो तीर्थ भ्रमण करते हो गीता पढ़ते हो उपनिषद पढ़ते हो भागवत पढ़ते हो रामायण पढ़ते हो इन सब का विषय क्या है एक विषय है भगवान हर चीज के अंदर आपको कॉमन फैक्टर क्या है भगवान है जब हम भगवान में मन लगाते हैं तो चित्त शुद्ध होता है जब हम कर्मयोग करते हैं हमको बार बार कहते हैं ना कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है कर्मयोग करो कर्मयोग कर्मयोग का मतलब क्या हुआ आप कर्म करो एट द सेम टाइम भगवान का भी चिंतन करो वो कर्मयोग हो जाएगा भगवान की खुशी के लिए कर्म होगा तो कर्मयोग हो जाएगा देखो आगे के जमाने के अंदर ना लोग कैसे काम करते थे अब एक कुली एक गोदाम के अंदर मान लो 100 बस्ते चावल रखे हुए हैं उसको भेजा कि जाओ भाई गोदाम गिन के आओ कितने बस्ते हैं वो कैसे गिनता था आपको पता है राम एक राम दो राम तीन राम चार राम पांच राम छह और या अगर मंडी के अंदर अनाज अगर आपको लेना है भाई 100 किलो दे दो तो वो जो है सब्जी 1 किलो राम एक राम दो राम तीन देखो हर काम के अंदर 1, 2, 3 के साथ में राम 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 लगा दिया और क्या हुआ उसे उसका मन शुद्ध हो रहा है शुद्ध हो रहा है तो चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि हो जाने के बाद में फिर एकाग्रता आएगी उपासना करने से फिर एकाग्रता आती है पहले चित्त को शुद्ध करना है उसके बाद में चित्त को एकाग्र करना है उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञानी बन गए कितना सीधा रास्ता है छोटा सा काम है एक चित्त शुद्धि करनी है चित्त एकाग्रता करनी है और ज्ञान प्राप्त करना है बस इतना ही काम है मगर इन यज्ञों को हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है अब प्रश्न आता है कैसे करें भगवान ये भी बताओ तो भगवान कहते हैं कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से केवल इतने जानने से ज्ञात्वा देखो ज्ञात्वा वर्ड जो है गीता में कई बार आया है भगवान बार बार ज्ञात्वा कहते हैं केवल आपको जानना है केवल आपको जानना है ऐसे जान के करो बस भगवान कहते हैं कि ये सारे के सारे कर्म क्या है कर्म जान है ये सारे के सारे कर्म मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया है जितने भी हम कर्म करते हैं कैसे कैसे हो सकता है काया वाचा मनसा और तो कोई तरीका नहीं है इधर आप शरीर से काम कर रहे हो नहीं तो वाचा कर्म है या मन से चिंतन कर रहे हो तीन किस्म के कर्म है तो काया वाचा मनसा आप कर्म इसको कर्म रूपी जानो और इस प्रकार कर्म से मुक्त हो जाओ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ आप बंधन से मुक्त कैसे होंगे आपको बताना होगा आप कैसे बंधन से मुक्त होंगे सूत्र भगवान ने आगे बता दिया है
यू टर्न
अठारवां इस अध्याय का अठारवां श्लोक प्राण श्लोक है। उसमें सूत्र भगवान ने बता दिया कि आपको अकर्ता होके कर्म करना है। आप कर्म बिना कर्म किए एक सेकंड नहीं रह सकते। भगवान ने ऐसा ही आपको बनाया है, आप कर्म के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। और भगवान ने बताया मैं भी बहुत कर्म करता हूं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, आप भी वैसे ही करो, मैं कर्म से बनता नहीं हूं। भगवान का जन्म कभी कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान राम ने जब अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया, वो कर्म से अनुसार नहीं हुआ। और हमारा जन्म कैसे होता है? कर्म के अनुसार होता है। कैसे होता है कर्म के अनुसार? हम करते हैं कर्म, मगर हमको मालूम नहीं कैसे करना है, गीता हमने पढ़ी नहीं है, कर्म योग हमको आता नहीं है। कर्म हम करते हैं, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। हमारे कर्म साकाम कर्म होते हैं, हमारे कर्म के अंदर कर्ता भाव रहता है, कर्ता भाव होने के बाद में भोक्ता हो जाते हैं हम, भोगना भी हमको पड़ता है। जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होता है, और जब भोग लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, ये भोग अच्छा लगा, ये टैको बेल है, ये फिर टैको बेल खाना है हमको, अच्छा लगा, और ये अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना है हमको, आप उस तरफ नहीं जाते हो फिर, है ना। अब आप लोग आप सोच के देखो, आप लोग को भी पसंद है, आपकी पसंद होगी इस दुकान का चीज हमें खानी है, दूसरे पूछे नहीं ये नहीं खानी हमको। लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबकी बदलती रहती है, सब में अलग अलग एकदम है, सब में अलग। उसके कारण हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है। वासना बन गई, वासना क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उस लाइक्स डिसलाइक्स फिर जन्म हो गया। मगर भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं भी कर्म करता हूं, अगर मैं कर्म नहीं करूं तो सारे लोग कर्म करना बंद कर देंगे। तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते, हम तो कर्म करते हैं मगर हम कर्म से नहीं बनते हैं। तो हम कैसे नहीं बनते हैं? वैसा जान के आप भी वैसे ही करो। कैसे करते हो भगवान? अकर्ता। आपको मैंने कहानी भी सुनाई थी, कौन सी? दुर्वासा की बताई थी आपको, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण कहाँ है? वो उस तरफ में है, नदी के उस पार है। तो दुर्वासा से आके बोले भाई उनको बुलाओ जाके। तो बोले नदी में बाढ़ आई हुई है, नहीं जा सकते हम। तो बोले नदी के पास में जाके बोलो अगर श्री कृष्ण जो है बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता दो। रास्ता दे दिया। यहां 16,008 बीबियां बैठी हुई हैं इस तरफ में। क्या भाव है? अकर्ता भाव है। और उधर से जब वापस आ रहे हैं श्री कृष्ण बोले जाओ तुम जाके बोलो मैं आता हूं। फिर उधर से जो है देखते हैं फिर नदी बढ़ी हुई है। अब दुर्वासा ने अपने सब शिष्यों के साथ में पेट भर के भोजन किया। अब भगवान कहते हैं जाके नदी को बोलो कि दुर्वासा ने अगर भोजन नहीं किया है तो हमको रास्ता दो। दुर्वासा ने नदी ने रास्ता दे दिया। तो भोजन तो किया है, कैसे किया? दोनों ही अकर्ता भाव में हैं। दुर्वासा भी ज्ञानी है, भगवान कृष्ण भी ज्ञानी है, दोनों ही अकर्ता भाव से कर रहे हैं, इसलिए प्रभावित नहीं होते कर्म से। अगर हम भी अकर्ता भाव से करें तो प्रभावित नहीं होंगे, कर्म बंधन नहीं होगा। बराबर आपको याद रखना है असंगो हम पुनः पुनः, असंगो हम पुनः। आत्मा क्या है? असंग है। आत्मा किसी से अटैच नहीं होता। आपको बराबर अपने को याद करना को मैं कौन हूं? मैं वो असंग आत्मा हूं, मैं किसी से अटैच नहीं होऊंगा, किसी से संग नहीं करेंगे। तो कर्म अकर्म विकर्म का तत्व क्या है? अकर्ता। फिर से यहां भगवान ने एक बार कह दिया। अब भगवान कहते हैं कि सब यज्ञों के अंदर ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है।
श्रेयान् ब्रह्ममयाद् यज्ञात्,
श्रेयान्
ब्रह्ममयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप, ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते
ज्ञाने परिसमाप्यते
श्रेयाद्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
भगवान कहते हैं उन सब यज्ञों को तू कर्मज कायिक वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाला जान, वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं हैं। हम कायिक वाचिक मानसिक जो भी कर्म करते हैं वो आत्मा नहीं करता है, आत्मा की प्रेजेंस के अंदर में काया वाचा मनसा काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर बल्ब लाइट देता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं देती है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर पंखा हवा देता है, गीजर गर्म करता है या हीटर गर्म करता है, मगर वो खुद जो है ना गर्म है ना ठंडा है। उसी तरह से शरीर मन बुद्धि काया वाचा मनसा उसकी प्रेजेंस के अंदर काम करते हैं, ये हमको जानना है। और वो क्या है? वो अकर्ता है, वो असंग है। तो भगवान कहते हैं कि मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाले जान वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित है। बहुत बार हम लोगों ने कहा है आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकता। सुतरांग इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है? अशुभ यह है कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, यही अशुभ है। अपने आप को आत्मा मानो, और आत्मा क्या है? अकर्ता है। तो इससे अशुभ जो है चला जाएगा। मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूं, इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सीढ़ी क्या है? सीढ़ी केवल है पहले चित्त शुद्धि, यज्ञ करो या यज्ञ में सहायता करो, उसके बाद में चित्त एकाग्रता उपासना से करो, और उसके बाद में तीसरा जो है ज्ञान लो। हमने कई बार बताया है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर में आपको वेद पढ़ना है, वेदो नित्यम अधीयताम, शंकराचार्य जी का साधना पंचकम में पहला स्टेप है। ब्रह्मचर्य आश्रम एक स्टेप के अंदर खत्म हो गया। अभी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, भज गोविंदम केजी से लेके ग्रेड एट तक भज गोविंदम पढ़ रहे हैं। आप किसी भी जाके बच्चे से पूछ लीजिए, हमने उनको बताया सुख दो किस्म के हैं, एक टेम्पररी है दूसरा परमानेंट है, आपको कौन सा सुख चाहिए? हर बच्चे ने कहा हमको परमानेंट सुख चाहिए।
थर्ड फोर्थ ग्रेड फर्स्ट सेकंड ग्रेड आल्सो सेम,
परमानेंट सुख चाहिए, स्थाई। फिर हमने बताया देखो ज्ञान जो है दो जगह से मिलता है, एक यूनिवर्सिटी से मिलता है जिसको सेकुलर ज्ञान कहते हैं, और एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होती है जहां से स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है। जो सेकुलर ज्ञान है उससे आपको जो है टेम्पररी सुख मिलेगा। और आप लोगों ने सबने क्या ठीक किया है? परमानेंट सुख। परमानेंट सुख कहां मिलेगा? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से मिलेगा। फिर हमने उनको बताया कि इंडिया के अंदर भगवान शंकराचार्य ने 4 फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसको मठ कहते हैं, पूरी मठ, द्वारका मठ, श्रृंगेरी मठ और जोशी मठ, ये 4 जो है यूनिवर्सिटी है। वहां अभी भी शंकराचार्य हैं, और 1200 साल से ऊपर से 1200 साल से ज्यादा ये यूनिवर्सिटी चलती आ रही है, अभी तक चल रही है। तो परमानेंट सुख आपको अगर चाहिए तो आपको ये यूनिवर्सिटी की भी स्टडी करनी है। अब आप लोग सोचोगे कि इंडिया में कहां से मिलेगा, तो हमने कहा ये यूनिवर्सिटी कहां है? बच्चों ने कहा कि ये चिन्मय मिशन है। बच्चों ने क्लास थ्री फोर के बच्चों ने कहा
फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी
कहते हैं कि ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये बाल विहार है। तो फिर हमने कहा कि देखो अगर आपको परमानेंट आपको हैप्पीनेस चाहिए आनंद चाहिए तब आप बताओ आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है। बोला आना है। तो अब आज से आप जो है आपके माता पिता आपको जोर से नहीं लाएंगे, आपको अपने माता पिता को जोर से कहना होगा कि मेरे को बाल विहार लेके चलो। क्यों लेके चलो? अब आपके विचार एकदम शुद्ध हो गए हैं, आपको मालूम हो गया है कि आपको क्या चाहिए और ये कहाँ मिलेगा। फिर हमने ये भी बताया कि आपको इधर भी पढ़ना है क्योंकि पैसे चाहिए, वो भी चाहिए, मगर ये पैसे वाला जो कमाने वाला काम है ना ये आपको परमानेंट सुख नहीं देगा। देखो छोटे छोटे बच्चे समझ गए, भज गोविंदम समझ गए।
भज गोविंदम खत्म हुआ आज, भज गोविंदम मतलब पूरा नहीं, कुछ श्लोक आठ दस श्लोक मेन में।
तो भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप है। ओ परंतप, ओ अर्जुन, ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बताएंगे आज के। आज हमने जो है डिस्कोर्स शुरू किया था इसी से कि देवी का यज्ञ करने से, देवी देवता की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। और ज्ञान यज्ञ से आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। ब्रह्म यज्ञ मिलेगा आपको, ब्रह्म मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं देखो जो यज्ञ द्रव्य से पूर्ण होते हैं उसको द्रव्यमय कहते हैं। जैसे आपको अगर वहां पर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो आपको चाय देते हैं, आपको और मिठाई नहीं खानी होगी, इतना उसके अंदर चीनी होता है, सुगरमय उसको कहेंगे। जहां पर मय मतलब प्रचुरता, जहां पर प्रचुरता हो उसको मय कहते हैं। या आपको दूध वाली चाय, ढाबे में जाओ दूधमय चाय मिलेगी, पानी कम होगा दूध ज्यादा होगा। तो द्रव्यमय क्या हुआ? जहां पर द्रव्य की प्रचुरता है। अब ये द्रव्य यज्ञ क्या क्या है इसमें अंदर देखो, देव यज्ञ के अंदर घी सामग्री क्या है ना, द्रव्य है ना, उसको द्रव्य ही तो कहेंगे। अच्छा उससे फल क्या प्राप्त होगा? आपने देव यज्ञ किया कोई, उसके आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। स्वर्ग किसका बना हुआ है? वो भी द्रव्य का बना हुआ है, पंच महाभूत का। आपको याद होना चाहिए कि पंच महाभूत से हमारा पिंड और ब्रह्मांड बना। याद है आपको पिंड किससे बना है? पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ब्रह्मांड किससे बना है? इन्हीं पांच से बना हुआ है। तो उसका फल अगर आपको मान लीजिए आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया तो द्रव्य डाल के आप हवन कर रहे हो तो वो सामग्री भी क्या है? पंच महाभूत है। उससे जो फल मिला वो क्या है? वो भी पंच महाभूत है, इसलिए वो द्रव्यमय हो गया। विषय ग्रहण, विषयों को जब हम ग्रहण करते हैं, विषय क्या है, किससे बने हैं? देखो ये भी द्रव्यमय हो गया, विषय भी हो गया। संयम यज्ञ, इंद्रियों का यज्ञ करते हैं, इंद्रियां किससे बनी है? सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी है, देखो वो भी द्रव्यमय हो गया। प्राणमय, प्राणायाम करते हैं, प्राण किससे बने हैं? सूक्ष्म पंच महाभूत से प्राण भी बने हुए हैं, देखो वो भी हो गया द्रव्यमय हो गया। तो द्रव्य यज्ञ हो, तप यज्ञ हो, भोग योग यज्ञ हो, व्रत आदि सब पंच महाभूत से जुड़े हुए हैं। अच्छा सारे द्रव्य क्या हैं? विकारी हैं, विनाशशील हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो सारे के सारे विकारी, मॉडिफाइंग, और सारे के सारे विनाशशील हैं। तो उनके फल क्या होंगे? विनाशशील होंगे ना। पहले ही हमने पहले सेंटेंस में कहा था आपको देव यज्ञ से जो भी फल प्राप्त होगा वो
फाइनाइट।
अब समझ में आ गया आपको क्यों फाइनाइट होगा? तो द्रव्यमय यज्ञ जितने भी हैं जिनके अंदर द्रव्य की हम सहायता लेते हैं उनके फल भी फाइनाइट होंगे। मगर ज्ञान यज्ञ का फल क्या है? ज्ञान यज्ञ का फल है ब्रह्म की प्राप्ति। तो ब्रह्म क्या विनाशी है, विकारी है? नहीं। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। मान लिया आप लोगों ने कि नहीं माना? माना? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अगर आप जो भी यज्ञ करें तो आप अपना जो है उसके ऊपर इसको लागू करके देखिए, अगर यज्ञ का फल द्रव्य है तो वो द्रव्यमय है, अगर यज्ञ का फल ब्रह्म है तो वो ज्ञान यज्ञ है। आप कोई भी यज्ञ करते हैं उसका फल अगर आपको द्रव्य मिल रहा है तो द्रव्यमय यज्ञ हो गया। ज्ञान यज्ञ को छोड़कर बाकी के सारे यज्ञ द्रव्य। कोई भी द्रव्य यज्ञ आपको ब्रह्म नहीं दिलाएगा, केवल ज्ञान यज्ञ जो है आपको द्रव्य यज्ञ देते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्या द्रव्य यज्ञ हम छोड़ दें? नहीं, द्रव्य यज्ञ साधना है, ज्ञान यज्ञ साध्य है। आया समझ में? द्रव्य यज्ञ साधना है। क्यों द्रव्य यज्ञ साधना है? इससे मन की शुद्धि होती है। साध्य क्या है? ब्रह्म है, ज्ञान। अल्टीमेटली वहां पहुंचने के लिए ये करना पड़ेगा पहले, ये साधना है, ये मीन्स है। गोल क्या है? गोल हमको जो है ब्रह्म की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको द्रव्यमय यज्ञ करना है। साधन और साध्य, तो साध्य जो होता है वो श्रेष्ठ होगा। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब सर्वम कर्म अखिलम, देखो कर्म के दो विशेषण यहां बताए गए हैं, एक सर्वम है, दूसरा वर्ड अखिलम है। सर्वम अखिलम पार्थ, हो पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते, ये सारे के सारे ज्ञान की तरफ जाते हैं। तो यहां पर सर्वम मत का मतलब हुआ कि कर्म कांडे न, सर्व कर्म कांड उत्तम। कर्म के यहां पर सर्वम का मतलब हुआ कर्म कांड। कर्म कांड आप समझते हो ना, रिचुअल, द्रव्यमय यज्ञ जिसको कहते हैं। और अखिलम का मतलब क्या हुआ? अखिलम का मतलब हुआ उपासना कांड। उपासना कांड, उपासना कांड जो है मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य है, जिसको जप को हम करते हैं वो मानसिक है, मानसिक है। वो किसके लिए होता है? चित्त एकाग्रता के लिए होता है, चित्त एकाग्रता के लिए। और बाकी कर्म कैसे होते हैं? कर्म कांड, यज्ञ रूपी अगर कर्म कांड करेंगे तो मन शुद्ध होगा। तो मन शुद्ध करना है और चित्त एकाग्र करना है,
पूजा भी और उपासना है।
उपासना जो है वो मानसिक क्रिया है। हमने अभी आपको बता रहे थे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? वेद पढ़ना है, वेदो नित्यम अधीयताम। गृहस्थ आश्रम में क्या करना है? जैसे हमको वेद में शास्त्र में काम करने को कहा है वैसे हमको गृहस्थ आश्रम में करना है। वैसा करने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी, क्योंकि आपको हर सर्व कर्म भगवान की प्रीति के लिए करने हैं। ऐसे करने से चित्त की शुद्धि होगी। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना है आपको? आपने सारे कर्म, चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध होने के बाद में अब चित्त की एकाग्रता करनी है, एकाग्रता करनी। तो चित्त की एकाग्रता के पहले क्या दो काम करने हैं? ये सारा विज्ञान है। पहले दो काम, चित्त एकाग्रता करने के लिए पहले चित्त शुद्धि चाहिए, उसके पहले चित्त शुद्धि के उपाय जानने हैं। कैसे, क्या उपाय है? वेदो नित्यम अधीयताम करने से तब आपको पता लगेगा कि हमको कैसे गृहस्थ आश्रम में कर्म करने चाहिए। वैसे कर्म करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी, फिर उसके बाद में चित्त एकाग्रता। आप ये बिना किए हुए आप समाधि के अंदर बैठना चाहते हो, चित्त एकाग्रता मेडिटेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? अब आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको विज्ञान समझ में आए ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा है। पहले का स्टेप अगर आपने न किया हो, चित्त सिद्ध न हुआ हो, तो चित्त एकाग्र होगा? नहीं होगा। चित्त शुद्ध करने के लिए क्या करना है? आपको वेद को पढ़ना होगा कि क्या करने से चित्त शुद्ध होता है। गीता में बताया ऐसे शुद्ध होता है, हमने पढ़ा नहीं। तो यहां सर्वम का मतलब हुआ कर्मकांड और अखिलम का मतलब होता है उपासना कांड। तो सारे कर्म, कर्मकांड और उपासना कांड द्वारा चित्त एकाग्रता और चित्त शुद्धि करने के बाद में फिर जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो द्रव्य यज्ञ का जितने भी फल हैं वो पेरिशेबल हैं, और द्रव्य यज्ञ जो है वो साधन है। साध्य क्या है? ज्ञान है। अल्टीमेट हमको पाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो चीजें पहले करनी है, चित्त की एकाग्रता और चित्त की शुद्धि। जब भी भगवान जो है अर्जुन का नाम लेते हैं तो आप बराबर याद रखना कि वो बताना चाहते हैं कुछ स्पेशल, कुछ बताना चाहते हैं। जैसे ही वो अर्जुन का नाम लेंगे, जिस रूप से भी लें, तो वो चाहते हैं कि तुम अपना पूरा ध्यान दो हे अर्जुन। जैसे ही अर्जुन कहा तो अर्जुन जो है भगवान कुछ कहने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान कहते हैं अपने शत्रु को समाप्त को परिसमाप्यते। अब तुम्हारा शत्रु क्या है? संसार तुम्हारा शत्रु है। अगर इस जीवन के अंदर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? फिर रह गए इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करना है। अच्छा, अगर हम सारे कर्म, इसके अंदर हमको निष्कर्ष क्या मिला? सारे कर्म हमको जो काया वाचा मनसा करते हैं वो कैसे करना है? अकर्ता भाव से करना है। कर्म अकर्म विकर्म का तत्व तो क्या है? अकर्ता भाव। डुअरशिप को हमको छोड़ना है। उसके बाद में आप जो है कर्म और उपासना के बाद में जब आपका चित्त एकाग्र हो, आप खुशी से अब काम करते हो, खुशी से करते हो। और आपको जो है एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर कर्म और उपासना नहीं करना है। हम लोग कहते हैं ना कि ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको फिर से कर्म योग या उसको पूजा जप या तीर्थ भ्रमण नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं। उसकी मर्जी है करे, नहीं मर्जी है करे। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसकी चित्त एकाग्रता पहले हो चुकी है, चित्त शुद्धि हो चुकी है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर से चित्त शुद्धि चित्त एकाग्रता की उसको दरकार नहीं। उसकी मर्जी है, वो कर सकता है, वो पूजा कर सकता है, उसकी मर्जी है। तीर्थ भ्रमण में जा सकता है, नहीं जाएंगे मंदिर मत जाओ, कोई दरकार नहीं है। मगर वो खुशी से दूसरों के लिए काम कर देगा। अब जैसे मान लो आप जो है आशीष जी हिंदी के अध्यापक हैं, अब उनकी कोई छोटी बेटी आके पूछे मेरे को कौखा का उसमें आउट ऑफ हैप्पीनेस ही विल टीच, उसको क्या, उनको क्या फिर कौखा का प्रैक्टिस करना होगा? आपको क्या नहीं करना है। उसी तरह से ज्ञानी जो है आउट ऑफ हैप्पीनेस वो दूसरों को बांट रहा है, खुशी से कर रहा है, जरूरी नहीं है। हमने आपको बताया कि वो जो है निवृत्ति मार्ग भी हो सकता है, प्रवृत्ति मार्ग भी हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरी मर्जी आपको बांटूं या नहीं बांटूं, आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो हमको जितने भी कर्म करने हैं अकर्ता भाव से करने हैं। अच्छा भगवान हमको ये बताओ कैसे ज्ञान मिलेगा? हमको तो ज्ञान चाहिए, हम तो आपकी गीता सुनने के लिए आते हैं, हमको ज्ञान कैसे मिलेगा बताओ ताकि मुक्ति हो जाए संसार से। भगवान कहते हैं अगली क्लास में जरूर आना, बताएंगे। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।